नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। सरकार ने डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन ATF पर निर्यात शुल्क लगाया है और पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया है। इससे पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी और उपभोक्ताओं पर पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक तेल की बढ़ती कीमतों का असर नहीं पड़ेगा। पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य वैश्विक अनिश्चितता और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बीच देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन की घरेलू उपलब्धता को प्राथमिकता देना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत के पास वर्तमान में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी पूरी या उससे अधिक क्षमता से काम कर रही हैं।
हमारी रिफाइनरीज 100% या उससे भी ज्यादा कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ LPG हैज इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 40%। LPG वी हैव अ ह्यूज इंपोर्ट डिपेंडेंसी और इसका 90% जो आ रहा था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आ रहा था। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रायोरिटाइज किया जाएगा।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत की वैश्विक साझेदारों के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने बताया कि विदेश मंत्री एस जयशंकर G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए फ्रांस में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठकें की और द्विपक्षीय संबंधों के अलावा पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर चर्चा की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष और हॉर्मुज जलडमरू मध्य की जारी रुकावट के बीच दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने की बजाय खुद का असर लेने का विकल्प चुना है। सरकार ने राज्यों के लिए वाणिज्यिक LPG आवंटन को बढ़ाकर 70% करने का निर्णय लिया है। इसमें से 20% आवंटन इस्पात, ऑटोमोबाइल, कपड़ा और अन्य श्रम प्रधान उद्योगों को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए राज्यों की तैयारी और योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। इसके अतिरिक्त वैश्विक तनाव के बीच ईंधन की आपूर्ति और महंगाई पर भी विचार विमर्श होना है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज लोकसभा में जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। ये विधेयक कुछ अधिनियमों में संशोधन करके अपराधों को निर्दिष्ट श्रेणी से निकालने और तर्कसंगत बनाने का प्रयास करता है। इसे जीवन और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विश्वास आधारित शासन को और मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है। राज्यसभा में आज वित्त विधेयक 2026 और विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में विधेयक पेश किया। इसमें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की संचित निधि से कुछ राशि का भुगतान और विनियोग अधिकृत करने का प्रावधान है। चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सुधारों को ध्यान में रखकर वित्त विधेयक तैयार किया गया है। चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि कर संरचना में सरकार ने केवल मामूली फेरबदल किया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से मध्यम वर्ग को लाभ नहीं होगा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने आज 2,38,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इन प्रस्तावों का उद्देश्य रक्षा सेवाओं की क्षमता बढ़ाना। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये स्वीकृति भारतीय सेना की वायु रक्षा ट्रैकिंग प्रणाली, आर्म्ड पियर्सिंग टैंक इम्यूलेशंस, उच्च क्षमता के रेडियो रिले, धनुष गन प्रणाली और रनवे एरियल निगरानी प्रणाली के लिए दी गई है। भारतीय वायुसेना के लिए मध्यम परिवहन विमान की खरीद, S-400 मिसाइल प्रणाली, दूर तक मारक क्षमता वाले विमानों और Sukhoi-30 एयरो इंजन के ओवरहॉल के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। भारतीय तटरक्षक बल के लिए हैवी ड्यूटी एयर कुशन व्हीकल के लिए भी स्वीकृति दे दी गई है। रक्षा खरीद परिषद ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6,73,000 करोड़ रुपए के 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैंकॉक में तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता के पहले चरण में भारत ने 10 पदक जीत लिए हैं। भारत ने कंपाउंड मिक्स्ड टीम में स्वर्ण पदक, पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक अपने नाम किए। भारत ने 2 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक समेत 10 पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।